نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی کی تذلیل کرتا ہے، تذلیل کہتے ہیں بےزتی کرنے کو، ڈسرسپیکٹ، توہین کرنا، اس وقت جس وقت کہ وہ مسلمان بھائی کسی ایسے معاملے میں پھنسا ہو کہ اس کا وہ حال ہو کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی رسوائی ہو رہی ہے، اس کی ہتک ہو رہی ہے، اور اس موقع پر وہ مسلمان بھائی اس کی اور بھی زیادہ تذلیل کرے، وہ کیسے؟ دیکھو آج کل تو یہ معاملہ ہے نا، بس اسی ٹو میں آدمی رہتے ہیں کہ کسی کو کوئی برائی پتہ لگ جائے، میں بس کسی کا نقص پتہ لگ جائے، کسی کے گھر کی کوئی بات پتہ لگ جائے، بس وہ اگر رات کو پتہ لگ گئی تو بڑی مشکل سے رات کٹتی ہے انسان کی، صبح اور میں کسی کو بتاؤں یہ بات، جلدی سے بات اس تک پہنچا دوں کہ یار فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں کا تو یار اتنا ہو گیا ہے، فلاں کا معاملہ تو یار بہت خراب ہو گیا ہے. ایمانداری سے سوچیں، ہمارے معاشرے میں ہے نا برائی، بھی بہت بری بات ہے، بڑی معمولی چیز ہے ہمارے لیے، کسی کے آدمی کی کوئی بے عزتی ہو رہی ہے، ہتک ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، آدمی اس میں مزہ لیتا ہے، لطف لیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کرتے جائیں گے، خاص طور پہ عورتیں توبہ 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 جی، ہم بس اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جی بڑا برا ہوا جی اس کے ساتھ، بڑا معاملہ یہ جی ہوا، غلط ہو گیا جی، بس یہ اپنی طرف سے اس کی ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے، اس کی تو بیچارے کی رپوٹیشن خراب ہوئی، تذلیل ہو رہا ہے آدمی، وہ تیز من تشا وہ تزل من تشا، اس تو اللہ کے اختیار میں کسی عزت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں، نہ آپ کو عزت لوگوں سے لے سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی بےزتی کر سکتے ہیں. یہ جو آپ سم ڈانس انسان کے اندر زندگی میں ہوتے ہیں، یہ تو ایک اللہ کے منائے ہوئے قانون ہیں، حکمتیں ہیں اس کی، مسلطیں ہیں اس کی ہزاروں چیزوں میں، ہمیں کیا پتا کہ بھائی اس کے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا، یا اس زمرے میں آدمی کیوں پھنسا، یا ایسے کیوں ہوا اس کے ساتھ، تو اللہ جانے وہ جانے اس کی حکمت ہے، ہم اس معاملے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، کتنے نفل ثواب ملے گا اس مجھے پتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن بری عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں بری عادتیں. ایک ایمان والا ہو، مسلمان ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو ماشاء اللہ، عبادتیں بھی کرتا ہو، تسبیحات بھی کرتا ہو، ذکر بھی کرتا ہو، یہ کام بھی کرتا ہو، تو کہاں گی اس کی بات نہیں، کہاں گی روزے حشر میں کیا حال ہوگا اس کا، ये जो हदीस बता रही है हमें कि आदमी को अपना फिक्र करना चाहिए इस चीज पर, ये क्यों होता है ऐसे। मैं एक नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआएं भी करता हूँ, इबादतें भी कर रहा हूँ, तो ये अंदर मेरे क्या है, ऐसी चीज मुझसे क्यों हो रही है, वजह क्या है इसकी, वो कितना बड़ा नुकसान है इसका। अल्लाह हदीस देखिए कितना बड़ा नुकसान, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं आज के बाद तो भाई वो ये ऐप जिसमें तौबा कर ले, ये सोच ले पक्की तौबा करे। दो गजात भी सुन रहे हैं इस बात को, बहुत अहम बात है ये, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इस ऐप के साथ आदमी मर जाए तो बहुत बड़ा शर है उसका। पक्का कानों का हाथ लगा लीजिए, कुछ हो जाए दुनिया, हमें जरूरत ही नहीं किसी की बात मुंह पे लाने की जरूरत ही नहीं, अच्छी हो बुरी हो हमें क्या जरूरत है, बस पक्का वादा कर ले अपने साथ में। कसम खा करता हूं कि ये समझने के 80 से ज्यादा भी ज्यादा गुनाहों से आदमी बच जाएगा, होते ही गुना सारे ही। ये जब से शुरू हुआ ना अनलिमिटेड मैसेज और अनलिमिटेड कॉल, इसने बड़ा काम खराब किया। अब बात तो होती नहीं टेलीफोन पर करने के लिए, कोई बात है कितनी होगी, इस्लामाबाद में क्या हाल है, ठीक ठाक, उसका पता चला आपको क्या हुआ, मैं तो आपको ये कर बताना नहीं चाह रहा था, ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करें, फ्री है ना फोन, और जेब में फोन रखा है, वक्त गुजारी है, यहाँ पैसा पूसा खाना पीना सब लगा हुआ इंसानों का, याशी में लगे हैं, उन गरीब मुल्कों को देखो जाके क्या हाल है दूसरे मुल्कों के अंदर, थोड़ी नज़र मार के देखें आप दुनिया की तरफ, आलम इस्लाम पे देखें, रोहिंग मुसलमान को देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह की नेमतों पे हमें तो शुक्र करना चाहिए, बजाय वो जो नेमतें दी गलत इस्तेमाल करें, हम बस अनलिमिटेड कॉलों को इस्तेमाल कर रहे हैं बिला वजह के अंदर। सोचिए दो मिनट के लिए बात कर क्या रहा हूँ, इसमें कुरान हदीस क्या बताता है, घरों के अंदर फसाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें से आती हैं, कितनी बड़ी सज़ा है। आप अल्लाह के फरमाते हैं कि जो शख्स किसी के हाल में तजलील करेगा, उसको रुसवा करेगा, जबकि एक आदमी बेचारा गिरफ्तार है उसमें, उसकी हतक हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, ऐसा मामला हो गया उसके साथ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर क्या है, अजीब बात है कि जब उसके साथ ये हालात होंगे, वो मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अल्लाह और करें सदी इस पर क्या फरमा दिया, बड़ी जबरदस्त बात फरमाई कि जब उसके साथ ये हालात होंगे, तो पता ही चलता है इस हदीस से कि जिसने जब किसी के साथ ऐसा काम किया है तो उसके साथ भी ये काम होगा जरूर। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि तू जो लगा है ना उसके साथ, उसकी बातों को कर रहे बातें, ये जो हदीस कितना बड़ा झंझोड़ा है कि कल अगर तेरे साथ ये हो गया होगा तो फिर तुझे मदद देने वाला कौन होगा, क्योंकि अपना तो पता तुमने साफ ही कर लिया है, क्या मांगेगा रब से तू। मैं तो आज ही कहता हूँ अल्लाह ताला कहता है कि तुझे मदद तेरा रब नहीं करेगा, फिर कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक तो ये खुद उसमें गिरफ्तार हो, और ये देख अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत होती है, हम बात गुनाह करके इस किस्म के भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो बात है वो हक, जो उसने फरमा दी है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये नहीं कि आज 10 साल हो गए मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, 15 साल हो गए, नहीं नहीं नहीं, उस वक्त होगा तो बिल्कुल तू बेसहारा हो जाएगा, तुझे तजलील का अल्लाह ताला ऐसा रुस्वा का सामान पैदा कर देगा कि जिस वक्त तू बिल्कुल लाचार होगा, और तुझे फिर उस वक्त ख्याल होगा, ओहो सोच जरा तूने किसी की बेइज्जती तो नहीं की थी, और तेरे वहम और गुमान में नहीं होगा मैं किसी को रुस्वा कर रहा था, किसी को बदनाम कर रहा था, किसी के साथ में बुरे काम कर रहा था, उसको ख्याल नहीं उसके साथ ही गेम हो चुकी होगी, जब बूढ़ा होगा रुसवाई का ऐसा सामान हो चुका, सब लोग हंस रहे होंगे उस पर, हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे उसका कि उसने एक आदमी का किसी जिंदगी में किसी लम्हे में मजाक उड़ाया था, किसी को उसने बड़ा बड़ा कहा था। ये दुनिया है, ये दुनिया है, दुनिया में तो हर चीज चलती है, सुबह से शाम यही हो रहा है, कुछ कुछ अप्स एंड डाउन हो रहे हैं दुनिया के अंदर, अभी कुछ हो रहा है आपके साथ, मेरे साथ कुछ हो रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है, अल्लाह हमें दुनिया के साथ तो नक्शे बदल रहे हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कल सुबह मेरे साथ क्या होगा, मैं घर से निकलूंगा मुझे क्या हो जाएगा, वजह से निकलूंगा मेरे साथ क्या हादसा हो जाएंगे, अजीब और गरीब चीजें सुनने में आती है। अच्छी खास चीज होती है, पता किसने बताया, अभी मैं गोश्त लेने गया तो गोश्त वाला मुझे कह रहे पता जी आप वहाँ क्या हुआ, कहते जी दिन कल मैं शटर टूट गया, रात को किसी ने चोरी कर ली, दूसरी जगह वो दूसरा कोई दूसरा आदमी बात बता रहा है। दुनिया के अंदर कारोबार चलते रहते हैं, तो अल्लाह ताला के इंतजाम है, हर वक्त आप एक नई से नई चीजें अल्लाह ताला के देखेंगे कायम हो रहे हैं। तो भाई तो दुनिया अल्लाह ताला की हिकमत में चल रही है, हमारे तो अपना एक काम करना चाहिए, बस अपने पर फिक्र रखे आदमी, मौत आने वाली है, कब्र की तैयारी है, हर वक्त ऐसे काम और अमाल करें जो हमें आखिरत की तैयारी की तरफ लेके चले और कब्र की तरफ लेके चले, जिससे कोई फायदा हो, जबान से कोई लफ्ज भी ऐसा निकले कि वहां जन्नत का एक दरख्त बन जाए। देखा भाई आपने, सबने आपने क्या कहा, क्या बना, सुभान, क्या वादा किया, नहीं अच्छी चीज पर उन्होंने कैसे प्यारे वादे किए, तुमने सुभान अल्लाह कहा नहीं, जन्नत में दरख्त बन गया, और जिसके जन्नत में दरख्त बन गया तो ये खुशखबरी है कि तू जन्नत में चला गया, वो जन्नत की खुशखबरी दे रहे अल्लाह ताला, एक लफ्ज कहा आपने। अच्छा ये क्यों आई बात, आप सुने ये क्यों होता है कि एक आदमी ये काम कर रहा है, दूसरा आदमी अच्छी बात सुनते हैं तो एकदम नारा मारता है सुभान अल्लाह, फर्क क्या है, ये फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों इंसानों में फर्क क्यों हो जाता है, फर्क इसलिए हो जाता है कि जो ऐसे इंसान होते हैं जो अल्लाह की तारीफ में चले जाते हैं हर बात में, किसी का फिक्र नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को डाला है और अपने आप को वैसे बचाया है जैसे अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कहा है कि तुम किसी नेक बंदों की सोबत में बैठो, मजलिस में बैठो, अच्छे लोगों से वक्त लगाओ, जमातों के साथ जाओ, तबलीग में बैठो, माहौल में बैठो। जो लोग इस तरह बैठते हैं चलते हैं उन लोग वक्त गुजारते हैं, उनकी जबान से फिर और कुछ नहीं निकलता, फिर क्या निकलता है, सुभान। बस ये फर्क है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को समझा है, वो एक हर आदमी कमजोर है गुनाहगार है, लेकिन उन्हें एक स्टेप उठा के एक उस इलाज को ले लिया जो अल्लाह के नबी ने बताया, कुरान ने बताया कि तुम क्या करो, अगर तकवा अख्तियार करना चाहते हो, नेक बनना चाहते हो तो क्या करो, सच्चों के साथ बैठ जाओ, बस वक्त उनके साथ गुजारो, किस्सा खत्म। क्योंकि अल्लाह ने एक इंसान के अंदर नेचर ये रखी है कि जिस सोबत में बैठते हैं वो रंग चढ़ना शुरू हो जाता है, उस पर रंग चढ़ना शुरू होता है। जाहिर अल्लाह के जिक्र में आप आके बैठेंगे तो वहां वही बातें सीखेंगे जो जिक्र वाली बातें होंगी, वहां कलमात सीखेंगे, दुरूद शरीफ सीखेंगे, अच्छे अच्छे कलमे सीखेंगे और ऐसी ऐसी नूरानी चीजें सीखेंगे जिसका डायरेक्ट इंसान के अंदर जाता है, नूर पैदा होता है। जब नूर आ जाएगा तो उसके पास टाइम होगा टेलीफोन लेके चोरियां करें, ये वही लोग करते हैं जिन्होंने इस फार्मूले पर जिंदगी को इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी अल्लाह वाले के पास बैठते हैं, ना उनके साथ जुड़ते हैं, ना अच्छी जगहों पर जाते हैं, ना कोई बातें सुनते हैं और जनाब वक्त ज़ाया करते हैं, तो क्या होता है फिर शैतान के साथ गलबे आते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे गुनाह लता उनसे करवा देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी, आज ज़माना बहुत ख़राब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़माना ख़राब है, हर तरफ फितने फसाद हैं और बुरे हालात में, जेबों के अंदर हमारे गुनाह रखे हुए हैं, जेबों में आ गए ना, अब तो दूर भी नहीं है, अब तो पॉकेट के अंदर है ना, नमाज में हमारे पॉकेट में है वो, सजदे में हमारे पॉकेट में है, शैतान जमा हुआ है उस पर, अब तो यहां तक आ गए फितने। तो बचने के लिए कुरान को समझो, कुरान क्या कहता है कि तुम कितना ही खतरनाक जमाना आ जाए, कितना ही गंदा जमाना आ जाए, कुरान को मत छोड़ना और कुरान को समझना, वहां से तुम्हें इलाज मिलेगा। तो यहां कुरान गारंटी दे रहा है कि दज्जाल का जमाना भी आएगा जो सबसे बदतरीन जमाना होगा दज्जाल का, उससे बड़े बड़े आएंगे, जूझ बाजूझ भी निकलेगा, वो भी निकलेंगे, बड़े बड़े जमाने भी तो आने वाले हैं, तो कौन बचेगा, लगता है उस तक के लिए बचने का मैंने तुम्हारा इंतजाम कर लिया, वो कौन से लोग में जो बचेंगे, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह गारंटी दे रहे हैं, हर माहौल की, हर जमाने की, हर फितनों से, हर चीज से बचने के लिए कहता है कि तुम्हें एक काम करो, दज्जाल भी आ गया और तुमने जिक्र शुरू कर दिया, जाकिर जो होगा वो दज्जाल के चक्कर में नहीं आएगा, क्या दज्जाल उसके चक्कर में, दज्जाल के चक्कर में नहीं आएगा, सब सिजदे कर रहे होंगे, वो कहेगा क्या मैं मार नहीं सकता, मैं खुदा मार सकता हूँ, वो आदमी को पकड़ेगा मारेगा, मैं जिंदा नहीं करता, उसको जिंदा कर देगा, आसमान से बारिशें बरसाएगा, जमीनों को उगा देगा, उसके वाकयात पढ़े आप दज्जाल के, हर कुछ करता चला जाएगा वो, और शक्ल भयानक होगी उसकी, एक आंख होगी उसकी सफेद आंख अंगूर की तरह, बस शक्ल होगा, और कह रहा मैं खुदा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि सुनो गौर से कि वो तो हो गई काना कि तुम कैसे समकते हो, नाउज बिल्ला अल्लाह ताला इस शक्ल क्या है कुछ, लेकिन क्योंकि अल्लाह के जिक्र से अल्लाह की मार्फत से बंदा इतना दूर होगा, इतना अंदर से कमजोर होगा कि नहीं नहीं जी ये तो सब कुछ दिखा रहा है, जिस तरह आज भी करते हैं ना, नहीं जी नहीं ये तो बड़ा पीर है जी, ये तो बड़ा ऊंचा पीर है, ये तो बेटे दे देता है, ये फलां कर देता है, ये तो ये कर देता है, और जनाब इसके पास जाओ तो बस ये जिन्नात निकाल दे, करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों? इसलिए कि अंदर कमजोर है हमारा, तवक्कल नहीं है ना, अल्लाह का जिक्र जो नहीं, ये जिक्र जो है ना भाई, ये कोई जिक्र इसलिए नहीं करते कि बुजुर्ग बन जाऊं या मैं पीर बन जाऊं, या ये तो जिक्र अल्लाह ने इलाज बताया, या अहिल्लज़ीन आमस पर जिक्र कसीरा वसब्बिहु बुकरतन असीरा हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख्रिजा मिन ज़ुलुमाति इलान नूर। तो घंटी दे रहे कि जिस खराफात में तू घुसा हुआ है, शिर्क करता फिरता है, बिदतें करता फिरता है, लोगों को खुदा बनाता फिरता है, लोगों से तू मांगता फिरता है, लोगों तक तू चलता है, जो खुशू के जिक्र कर, मैं तुझे इन दोनों से निकालकर नूर की तरफ ले आऊं। बस इस ये इलाज हमने नहीं करना, हम जिक्र नहीं करना, बस ये वक्त नहीं है जी, टाइम नहीं है, क्या करें जी, बस ये नहीं है। अल्लाह ताला ने कैसे इंतजाम किया, इसी बोल्डर में आप देख लें सुबह शाम हर मस्जिद में जिक्र का तमाम किया है। मेरी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत, यहां बैठ गए मुझे बताए इस मस्जिद का क्या कमाल किया कि जिक्र के? नहीं नहीं नहीं, 25-25 साल से 40-40 साल से मस्जिद बनी है, कहीं जिक्र नहीं, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो हर मस्जिद में जिक्र कर दिया। एक बार देखें अल्लाह की पसंद है, उस पर उसने रहम आ गया इस कौम पर, और फिर उसके असरात हुए, ऐसे असरात हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग गुनाहों से बच गए, औरतें बच गई, कुछ नहीं उनके पास, वो जिक्र है। और जैसे जिक्र में शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वादा है जिक्र में रुकसुम ज़ुलमात नूर, कि जो जिक्र करेगा उसको मैं गुनाहों से निकाल दूंगा। आ जाते हैं हमारा बेटा नाफरमान, ठीक है माहौल में होता है ना, बेटे नाफरमान हो जाते हैं, बच्चे नाफरमान हो जाती हैं, घरों में फसाद होते हैं, ये तो इस मुल्क में आए हुए तो भाई ठीक है, अब इससे घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो इलाज बताया है अपने बच्चों को जिक्र की तरफ ले गए, पहले वो जबरदस्ती लेके आए कि चलो वहां जिक्र की मजलिस हो रही है उधर बैठते हैं, वो घबराएगा, शैतान का सबसे बड़ी मौत अल्लाह का जिक्र है, वो नहीं आएगा, पीछे भागेगा, उसके बिठाएं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का वादा है कि आस्ता आस्ता उसके दिल मोहब्बत होगी और बुराइयां निकलना शुरू हो जाएंगी। ये इलाज है, जैसे एक आदमी बीमार है, उसको कोई बीमारी लग गई है तो आप डॉक्टर पास नहीं, कहता मैं तो नहीं जाता, पागल कभी नहीं जाता डॉक्टर को, कहते मैं तो ठीक हूं, मैं तो नहीं जाता, आपको चल धक्के देखो डॉक्टर को पकड़ो उसको लेके जाओ, जबरदस्ती ले जाते हैं क्लिनिक में, ले जाते हैं, ले जाते हैं, आखिर एक दिन इंजेक्शन देता है, दूसरा देता है, और फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं आदमी। तो ये भी अल्लाह की क्लिनिक है, ये भी हम जैसे बीमारों के लिए। अब जब दिल बीमार होता है तो मुझे बताया कितना बड़ा गुनाह हमसे हो रहा है, ये जो गुनाह हो रहा है कि हम लोगों को उछालते फिरते हैं, तजलील करते हैं, ये हदीस से मैंने पढ़ी, ये हमारे लिए आम है क्योंकि हमारे दिल में नूर ही नहीं, ये गुनाह तो कुछ भी नहीं, उसकी बुराई कर दी, उसके चलते चलते मार दे, उसको ठोका मार दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, कितनी बड़ी वईद आ रही है अल्लाह ताला के, तू फिर किससे मदद मांगेगा, इतना तूने अल्लाह को नाराज कर लिया, तूने ऐसी बात की है, क्योंकि उसने जिक्र ही नहीं किया। लेकिन एक जिक्र करने वाला जाकिर जो होगा वो कभी उसका टाइम ही नहीं होगा, उसके पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं था, अपने असकार को जिक्र को औकात को देखते हैं, और नूर आ चुका होता है, अल्लाह का वादा है उस पर कि मैं तुझे नूर दूँ। बाकी जिक्र का मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम हवा में उड़ने लगेंगे और हम ये बन जाएंगे, कुतुब बन जाएंगे, गौस बन जाएंगे, पीर साहब बने होंगे, लोग आ रहे होंगे, टांगे दबा रहे होंगे, हौल मिला कुरान यही कहा जिक्र के बारे में, ये तो लोगों ने स्टोरी फसाद बनाए हैं, ये तो दज्जाल और जबान है, हक और झूठ इसको पहचानो, किस चीज़ से पहचानोगे? कुरान और सुन्नत से। जिस जिक्र के अंदर आपको सुन्नत मिल रही है, अल्लाह के सुन्नत के नूर मिल रहा है, सुन्नत की मोहब्बत मिल रही है, तो वहां फसाद कैसे हो सकता? लेकिन जहां ऐसा जिक्र हो कि जहां ये सब चीजें खत्म हो रही है, बिदात मिल रही है, फजूलियात है, वो समझिए झूठा जिक्र, शक्ल तो दूध की दूध जैसी होगी, लेकिन आपको क्या पता है कौन सा दूध खालिस है और कौन सा सूखा दूध का बना दूध है? सूखा दूध समझते हैं, वो आर्टिफिशियल दूध जो होता, हम तो कहेंगे दूध है सफेद है ये है, तो आंखें दी अल्लाह पहचानो उसको, तोलो देखो कि सही शहद है या बनावटी शहद है, सही दूध है या असली नकली शहद है, शक्ल एक ही है, तो देखो सही जिक्र है या फ्रॉड जिक्र है, कैसे पता देगा सही जिक्र? जैसे कहते हैं शहद को पहचानने के लिए जी फला चीज डाल दो वो डूब जाएगी तो शहद सही नहीं है, वो अगर ऊपर आ जाएगी तो कुछ लोगों के पास नुस्खे होते हैं ना ये सही शहद है। तो अल्लाह ताला ने भी हर हक को पहचानने के लिए और बातिल को पहचानने के लिए, क्योंकि जो फ्रॉडी लोग हैं वो इन चीजों का सहारा लेके फ्रॉड करेंगे, उनको पता है कि जिक्र के नाम पर फ्रॉड करो लोग फंसेंगे। मेरी बातें शायद ऐसी हैं जो आप समझें उसको, तो बिल्कुल सही बता रहा हूं। हर मजमा को तालने के लिए अल्लाह ने एक पैगाम एक एक पैमाना दिया, हर मजलिस को, हर मजलिस को, कोई हो कोई भी दीनी मजलिस को एक पैमाना दिया है कि वहां नबी करीम की सुन्नत है, शरीयत है या नहीं है, क्या ये फेल शरीयत के मुताबिक है, सुन्नत का वहां रंग है, सुन्नत की बातें, जब ये है आंख बंद करके समझो बिल्कुल नूर नूर है, जो वहां आपको कोई ना कश्म नजर आए, ना कोई करामत नजर आए, ना कोई और चीज नजर आए, ना हवा में उड़ता नजर आए, सब माइनस है। सबसे बड़ी चीज उसके पास जो मौजूद है वो क्या है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बड़ी एक हदीस मेरे जहन में आई, चलते चलते आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुफीद है। और फिर अल्लाह रसूल आगे फरमाते हैं कि हाँ, जिस इंसान ने किसी इंसान की बेइज्जती नहीं की बल्कि जब ऐसा मौका किसी का देखा तो उसकी मदद की, सुभान अल्लाह, बजाय रुसवा करने के बदनाम करने के उसकी क्या की, मदद की। मदद क्या कि सबसे पहले पर्दा डाला उस पर, सुभान अल्लाह, हौसला दिया उसको कि कोई बात नहीं, हर एक के साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा कहोगे लोग बस नहीं नहीं आप ये मामला नहीं, उसको प्यार मोहब्बत से उसको हौसला दिया, उसकी मदद की। अल्लाह ताला कहता है बंदा मुझे इतना पसंद आता है कि उसको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मेरी मदद की तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब कहां कहां नहीं अल्लाह की, यहां अल्लाह ने पूरा दुनिया से लेकर जन्नत तक के दरवाजे खोल दिए उस आदमी के लिए। मौत के वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह की, कब्र में जरूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह की, हश्र में जरूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह की, मुझे बताए क्या चीज हमें काम आएगी, वहां अमाल भी नहीं पूछे जाएंगे, बस वहां तो क्या होगी रहमत इलाही चाहिए होगी हर जगह पे कि अल्लाह अपनी रहमत दे, ब्लेसिंग दे तू हमें, अमाल भी अल्लाह की रहमत से कबूल होंगे, याद रखे हज उम्रे भी अल्लाह की रहमत से कबूल होंगे, कुरान जिक्र भी अल्लाह की रहमत से कबूल होंगे, तो हमें अल्लाह की मदद तो हर जगह से, तो अल्लाह ने वादा की है इस काम पे ये काम ना करना। अब किसी मुसलमान भाई को तू रुसवा होते देख रहा है, बदनाम होते देख रहा है, उसकी ऐसी बात हो गई है कि बेचारे की इज्जत जा रही है, तो उसकी मदद कर, अगर कर सकता तो पर्दा डाल, कहता फिर मैं रब तुझसे वादा करता हूं कि जब तुझे जहां भी मदद पड़ेगी तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो ऐसा दिल बनाए ना, या तो बात ये तो बात हुई, इसको कर, ये पैदा करने के लिए अपने अपने अंदर को सही करें, अंदर को रोशन करें, और उसके लिए एक ही रास्ता है भाई, अच्छे लोगों के साथ बैठ के अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, लेकिन अच्छे ही मजलिस में बैठे हैं ताकि इंसान पे रंग चढ़ना शुरू हो जाए, और जिक्र को अपना मामूल बनाए, सुबह शाम का मामूल रखें जिक्र पर, किसी अल्लाह वाले के पास जाके जिक्र सीख लें कि भाई हमें आप कोई ऐसा जिक्र बताएं कि मेरा ये काम है, मैं ये करता हूँ, मैं मदरसों में जाता हूँ, मैं फलां भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, हर आदमी अपने अपने मामूलात हैं, तो जिक्र का मतलब ये नहीं आप वो काम छोड़ दें, आपको किसी काम में लगाए दीन को, आपको किसी में काम लगाए, अपने अपने काम पे लगते रहे, लेकिन जिक्र हर एक के लिए है, सुभान अल्लाह, जिक्र की छूट खाए किसी, अरे को चाहिए जिक्र, ये तो नहीं जी मैं फला तफसीर कुरान करता हूँ मुझे जिक्र की जरूरत है, मैं तो फला चीज करता हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसा काम है नहीं, अल्लाह ने जिक्र के लिए कहा लाजिम, ये तो पानी है हर एक के लिए, इसके बगैर तो कोई कबू नहीं आएगा इंसान। इसी भाई किसी अल्लाह के पास कभी कोई जिक्र हमें ऐसा हो बताएं कि हम अपने काम पे चलते रहें और हम डिस्टर्ब भी ना हो, थोड़ा बहुत जिक्र भी करें, अल्हम्दुलिल्लाह स्थानीय रहमतुल्लाह का माहौल था कि सबसे पहले उसे पूछते थे जब कोई जाता था ना, स्थानीय रहमतुल्लाह रहे वो तो माशाल्लाह एक शख्सियत है तसव्वुफ में, तो जब उनके पास कोई जाता है बैत होने के लिए जिक्र पहले क्या करते थे, एक दिन ही बैत करनी, تو اپنے مجھے لکھ کے دے کہ تیرے معاملات دن کے کیا ہیں، تیرا کام کیا ہے، تیرے بچے کتنے ہیں، بیوی کتنے ہیں، اور تو کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، پہلے وہ لکھ کے رہا، پھر اس کے مطابق میں تجھے ذکر دوں گا، تاکہ تکلیف، یہ تو ذکر نہیں چاہیے کہ آج آپ نے کر لیا اور دو دن کے بعد چھوڑ دیا، یہ تو فائدہ نہیں نا، چیز وہ جو ہمیشہ چلے الحمدللہ، یہ بے شک ایک تسبیح ہو لیکن تسبیح پہ اتنا استقامت ہو کہ ہمیشہ چلے الحمدللہ، وہ آپ کو کامیاب کر دے، لیکن یہ کہ آج 1000 تسبیح کر لیے، پھر 2000 کریں، 3000، 3 دن کے بعد پھنس ہو گئے، نہیں جی ٹائم نہیں ملتا، فلاں جی بہت زیادہ ہے، چھوڑ دی، بھاگ گئے، کہ تمہیں کس نے کہا تھا تم یہ شروع کرو کام، پھر تم اپنی حیثیت کے مطابق شروع، اگر تو 3 دفعہ بیٹھ کے اللہ اللہ کہہ دے، یہ بھی بہت ہے، استقامت ہونی چاہیے، تو یہ ہے کام، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آخر جب تک اندر صاف نہیں ہوگا لوگ بہت مشکل ہے، ہماری عبادت بھی خطرے میں ہے، ہمارے سارے بڑے بڑے معاملات بھی سارے خطرے میں ہیں، اندر ہے گند تو کہیں بھی برباد کر دے گا، وہ تمہیں ایک یہی گناہ ہو گیا ہمارے سے کم ہے کیا، جو اندر گند ہے، ابھی ہم نے اتنا بڑا کام کیا، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھے، عمرہ کرنے والوں کو دیکھا، آتے ہیں حج کر کے خانہ کعبہ کے چکر کاٹ کے حاضری دے کے اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آ جانا تھا یہ کیا ہو کیا گیا، کیوں اندر سے ہی نہیں، اندر گیا ہی نہیں، تو اندر کی حفاظت کرے آدمی، اللہ کا ذکر یہ کام کرتے ہیں، دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے آپ ذات کو کہ ذکر کا زندگی میں ایک معمول رکھنا چاہیے، جہاں مجلس ہو ذکر کی وہاں پہنچ جائیں، تھوڑی دیر پہنچ ذکر بیٹھیں، اور آرام سے سکون آیا ذکر کے اندر، الحمد للہ لطف آتا ہے، اور تھوڑا بہت سیکھ لیں، اپنے معمول میں رکھیں کہ صبح اتنا ذکر کر لیا، شام کو اتنا ذکر کر لیا، اور نقش بندی سلسلے کا ذکر تو بہت آسان ہے، سب سے افضل ہے، یہ بھی کیسی کیسی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں، وہ آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے اتنی 1000 تسبیح کرو فلاں کرو، یہ چکر ہی نہیں ہے، تسبیح کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہاتھ میں رہنے کی ہے ضرورت ہی کوئی نہیں، بغیر تسبیح کا جو ذکر ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے، یہ بھی نہیں پتا، وہ سب سے افضل ہے، نہ زبان ہلے نہ کچھ ہلے، سب سے افضل ذکر ہے وہی کہ نہ تسبیح چلے گی نہ زبان ہلے گی الحمدللہ، وہ قرآن ہوتا ہے، وہ کون سا ذکر ہے، فضائل میں لکھا ہے، وہ ذکر قلبی ہے، آسان ذکر ہے کہ سب سے افضل، سب سے آسان، وہ بھی نہیں کرتا، نہ تسبیح کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، بس کیا ضرورت ہے، بس تھوڑا سا دل پہ توجہ دینا ہے، بند کر کے اللہ، بس اللہ 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 اللہ، دل کر رہے ہیں آپ کا، آپ جو چاہے کام کرتے رہیں، نقشبندی شیخ تو یہ سکھاتے ہیں ذکر، الحمدللہ ایک سیکنڈ میں آپ کو دے دیں گے ذکر، لے کرو بھائی آؤ سیکھو، اسی وقت سکھا دیں گے، ایک سیکنڈ میں لگے گا، آؤ بھائی سیکھ لو ذکر، دیر کیوں کرتے ہو، صرف کسی نقشبندی شیخ کے پاس گئے، وہ نہ تصویر بتائے گا آپ کو، نہ قوم اونچی چیزیں کچھ بتائے گا، اتنے 1000 2000 کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا دل کو تیرا صاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ اس دل سے، اللہ کے ذکر سے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، ذکر قلبی، حضرت شیخ نے لکھا ہے سارے کتابوں میں، جس کے بہت فضائل ہیں ذکر کے، فضائل تو اپنی جگہ ہیں بہت زیادہ، تو یہ کوئی شیخ ملے اس کو کہتے ہیں یہ سکھا دو ہمیں، شرم آتی ہے، بتاؤ یہ شرم کیوں، یہ شرم کی بات ہے، جنت کا راستہ لے رہے ہیں، شرم آتی ہے، اس میں شرم کیا بات، کہ حضرت یہ آپ مہربانی فرمائیں ہمیں بتائیں کیسے ذکر ہوتا ہے، ہمارے دل پہ سکھا دیں ہم کو ذکر کر لیتے ہیں، وہ آپ کو اسے خود بتا دے گا کس وقت، نہ آپ کو پیسہ لگنا ہے، نہ کوئی حساب لگنا ہے، نہ کوئی چکر ہونا ہے، نہ کچھ، بے شک آپ نہ ملے اس کے بعد، وہ کون سے کہتے ہیں روز میں، بس ذکر آپ کو ایک تو بتا دے گا، طریقہ بتا دے گا، قلب پہ انگلی رکھ دے گا، آپ کے جو فارغ ہیں آپ، بس آپ کرتے رہے الحمد للہ، جو اتنا کرنا کرنا چاہیے نہیں دوستو، اونچا بولو نا ذرا، تو یہ بھی اللہ نے راستہ کھولا ہے، کل یہ باتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سب اللہ بتا رہے ہیں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے، وہ تقریر کی مجھے تھوڑی ہے کہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، یہ سب کیا ہے اللہ کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں، آٹومیٹکلی میری زبان پہ آ جا رہے ہیں، میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں، جیسے مشین نہیں ہوتی وہ چل رہی ہے، کیوں کہ حجت قائم ہو رہی ہے ہمارے پہ، بہت سے جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تھے اور آج ان کو پتہ لگ رہا ہے، یہ حجت قائم ہوگی روز قیامت کے لیے، کہ تجھے تیرے لیے میں نے مجلس لی تھی، تیرے لیے اس آدمی کو بھیجا تھا، اور تیرے ہی وجہ سے میں نے باتیں کروائی تھی، تو اس وقت تو سو رہا تھا، اور تیرے دماغ میں اس وقت بات نہیں آئی کہ یہ ساری باتیں قرآن حدیث کی ہیں جو میں نے تجھے دی تھیں، تو اس وقت تو نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، پھر کیا کہے گا بندہ، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ چانس دیتا ہے میں چلا جاؤں، پھر وعدہ کرتا ہے میں ضرور، اچھا چانس تو ادھر ملے گا، لیفٹ سائڈ پہ جانا، آج تو نے بات مانی ہوتی، सिकरे कल भी सीख लिया होता तो तू कहां से कहां होता, तेरा क्या मुकाम होता। तो जब भी मजलिस में बैठे हैं ये सोच के बैठा करेंगे भाई जो अच्छी बात समझ करेंगे उसी वक्त उस पर अमल शुरू कर देंगे, नियत करके बैठा करेंगे। ये नहीं आज सुना है तो फिर हाँ सोचेंगे हाँ भी करेंगे जी हाँ अब दाढ़ी भी निकलेगी जी फला हुक्म आया वहां बात पहुंच गई है ये हराम है उसी वक्त दाढ़ी को छोड़ दो। तब तो अल्लाह ताला कहता है मैं राजी हूं उस शख्स से कि मैंने इस आदमी पे ये बात पहुंचाई और इसने फौरन का अमल नवासा था कहा। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा है बस इसने मेरी नेमत का शुक्र किया है, मैंने इतनी बड़ी नेमत इसको दी मस्जिद दी उसके बाद एक आदमी मैंने अपने नौकर को भेजा गुलाम को भेजा उसके लिए कि जाए उसको बताया कि दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए इस मुश्त से दाढ़ी जो कम होगी वो रोजे आखिरत में उसको सजा दी जाएगी जहन्नुम में फेंका जाएगा उसको। ये वाजिब है थाली इमाम के नजदीक कि जो लोग पता नहीं बेचारे मासूम है नहीं पता बेचारों की चीज का तो उन तक ये पैगाम पहुंच जाए ताकि समझ जाए कि एक मुश्त दाढ़ी जो है वो क्या है लाजिम वाजिब है। छोटी दाढ़ी दाढ़ी नहीं होती वो ड्रामा है झूठ फ्रॉड है बल्कि वो गुनाह अजीम है कि वो और झूठ बोलता फिर रहा है कि मेरी दाढ़ी है। बात पहुंच रही है ना बस खोजिए अल्लाह ताला हमें तो पता नहीं था ला में माफ फरमाए तो बहुत बड़ा गुनाह है ना तो हम तो कब्र में हम जवाब नहीं दे सकेंगे। जब पूछा जाएगा कि बताओ इस आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो इस जात के बारे में वो जवाब नहीं दे सकेगा आदमी जो सुन्नतों का तहसीक करता था मजाक उड़ाता था। मैं आपसे बता रहा हूं आप वहां तो हकीकत खोलेगी जो सुन्नतों का मजाक उड़ाएगा वो तो जवाब ही नहीं दे सकेगा भूल जाएगा मैंने क्या कहना होगा जी मैं तो पहचानते नहीं मुझे तो पता नहीं कौन है पहचाने कैसे कि जो पैगाम नबी पाक लेकर आए फत्ता बोलेंगे तुम मेरी इताअत करो उस पर अमल ही नहीं किया उसने तो होगा क्या गुनाह अजीम है बहुत बड़ा गुनाह है। फौरन अपने चेहरों को सही कर लो फौरन एक मुश्त दाढ़ी नियत कर लो कि आज के बाद हम नहीं काटेंगे एक मुश्त होनी चाहिए ज्यादा हो जाए फाबिया लेकिन एक मुश्त से कम जो दाढ़ी होगी वो दाढ़ी नहीं होती नहीं होती गुनाहगार है बहुत बड़े बड़े लफ्ज हैं उसके गुनाह के। तो ये हो जाए सारी जब मजलिस में बैठो जो बात अच्छी पड़े कि तौबा करें उसी वक्त में ही बैठे तौबा कर लो कोई ऐप समझ आ रहा है उसके मुंह से निकल रहा है समझो कि अल्लाह ये मुझे पैगाम दे रहा है झूठ की कोई बात कहता है मैं झूठा हूं मुझे बता रहा है मैं फ्रॉडी हूं मुझे अल्लाह ताला ये बता रहा है और उसने उस महफिल में तौबा नहीं की तो उसने एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत को ठुकरा है जिसका जवाब देगा बहुत बड़ी नेमत का टुकड़ा है कि तू गुनाहगार था गंदा था बुरा था मैंने तुझे अच्छा होने के लिए भेजा तुझे चांस दिया और तेरी मौत नजदीक है दो दिन के बाद तूने मेरे पास आ जाना है। दो दिन में मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको मुझे क्या पता आपको क्या पता कितनी जल्दी हम चले जाए फिर वो मस्जिद याद आएगी इंसान को जिसको निला रहे होंगे ना वो तो उजागर होता है जब पानी डाल रहे होंगे ना उस पर उतारो कपड़े इसके मुंह में रुएं डाल रहे होंगे उसकी रुई डालती है ना नाक कानों के अंदर चीजें डाल लोगे तो वो उस तो कहेगा हाय 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 कल जी मेरी बात तो ऐसी मैं नियत कर ले तो कितना अच्छा होता। करते हैं भाई वो नियत पक्की नियत करते हो ना इस गुनाह को भी छोड़ना है और दूसरी बात क्या अल्लाह के जिक्र के साथ हमने अपने आप को लगाना है और कोई शेख मिल जाए उससे अल्लाह का जिक्र सीखना है। ये तीन चीजें मैंने बताई हैं आपको आज इन तीनों पर आज नियत कर लें उस पर हमने अमल करना है अल्लाह के फजल से। अब थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करते हैं इंशाल्लाह दुआएं करते हैं अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत से यहाँ से ले जाए।